अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है पुरस्कार। सड़क के चारों तरफ पुलिस की सीटियों की आवाज गूंज रही थी। जीप पर बैठी एक लड़की बेतहाशा गाड़ी चला रही थी। रफ्तार देखते हुए लगता था कि जल्दी कोई खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला है। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश अपने स्कूटर पर बैठा चिल्ला रहा था कि गाड़ी रोक दो, पर रफ्तार कम न होती देख वो स्कूटर जीप से सटाकर फिर चीखा, बहरी हो, सुनाई नहीं दे रहा, फौरन गाड़ी रोको। रुआसी आवाज में वो लड़की बोली, ब्रेक ही तो दबा रही हूं पर गाड़ी रुकती ही नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर चीखा, गाड़ी चलाना आता है, रोकना नहीं। इंस्पेक्टर ने देखा सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा है। वो स्कूटर से जीप पर कूद पड़ा और लड़की को लिए लिए उसने बाहर छलांग लगा दी। देखते देखते ट्रक से टकरा कर जीप चूर चूर हो गई। चूंकि इंस्पेक्टर लड़की समेत कच्ची जमीन पर गिरा था, इस कारण दोनों में से किसी को भी खास चोट नहीं आई। आग्नेय नेत्रों से लड़की की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर बोला, आत्महत्या करने का विचार था तो नदी में छलांग क्यों नहीं लगा ली? कम से कम मैं तो परेशान ना होता, तुम्हारी बेवकूफी से मेरी जान भी तो जा सकती थी। लड़की की आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो करीब 20 साल की श्याम वर्ण युवती थी, पर उसकी कटीली आंखों में गजब की कशिश थी। उसके अंग प्रत्यंग सांचे में ढले थे। श्याम वर्ण में भी इतना लावण्य हो सकता है, ये इंस्पेक्टर ने पहली बार जाना था। उसके कंधे तक कटे स्याह बाल इस समय बिखर कर उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा ही रहे थे। नटखट आंखों में इस समय भय समाया हुआ था। अपनी आवाज को कोमल करते हुए इंस्पेक्टर बोला, आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई खास बात थी? इंस्पेक्टर की कोमल वाणी सुनकर लड़की का भय थोड़ा कम हुआ। वो बोली, इंस्पेक्टर मैं मुसीबत में फंस गई थी। इंस्पेक्टर बोला, ऐसी कौन सी मुसीबत तुम पर पड़ी थी कि तुम जान देने पर तुल गई थी? लड़की भोलेपन से बोली, मैं अपनी जान क्यों देती? मुझे वैसे भी मौत से बहुत डर लगता है। मेरी मौत के बाद मेरी बीमार माँ की देखरेख कौन करेगा? झुंझलाता हुआ इंस्पेक्टर बोला, मुख्य बात पर आओ, मेरे पास फालतू समय नहीं है कि मैं तुम्हारा जीवन चरित्र सुनता रहूं। हिकारत से इंस्पेक्टर की तरफ देखती हुई लड़की बोली, तुम पुरुष कितने तंग दिल होते हो। एक तो मेरी जान जाते जाते बची, ऊपर से मुझे झिड़क रहे हो। खैर जाने दो, तुमने मेरी जान बचाई है, इस कारण मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ। इस एहसान के बदले में मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा सकती हूँ, बशर्ते तुम मुझे अपना सहायक बना लो। कूड़कर इंस्पेक्टर बोला, तरक्की और तुम करवाओगी। पहले तो तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में जेल की हवा खाओ, फिर मेरी तरक्की के बारे में सोचना। लड़की हंस कर बोली, तुम्हारी तरक्की तो मैं चुटकियों में करवा सकती हूँ। मैं बीए पास हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ। किसी स्कूल में अध्यापिका बनना या ऑफिस में क्लर्की करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन से मेरी रुचि साहसिक कार्य करने की रही है और यह सुविधा मुझे पुलिस की नौकरी में ही मिलेगी। इसलिए मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ कि मुझे अपना सहायक बना लीजिए। इंस्पेक्टर उसके खिल्ली उड़ाता हुआ बोला, नौकरी और तुम जैसी लापरवाह लड़की को सीधे से थाने चलो, वरना सख्ती से काम करना मुझे भी आता है। लड़की गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, अगर आप मुझे सहायक न भी बनाइएगा तो भी मैं इतनी कृपण नहीं हूं कि आपके प्रमोशन में मदद न करूं। खिजलाकर इंस्पेक्टर बोला, तुम बार बार सहायक और प्रमोशन की रट लगा रही हो। एक लड़की को मैं अपना सहायक बनाऊं? मैं मर्द होकर तुम्हारी सहायता लूं? क्या दुनिया में मर्दों का अकाल पड़ गया है? इतनी देर से बेकार की बातों में मेरा समय नष्ट कर दिया, आखिर तुम चाहती क्या हो? लड़की बोली, इंस्पेक्टर कुछ गुंडों ने मेरा अपहरण कर लिया था, क्योंकि मैं मशहूर सेठ लक्ष्मीदास की बेटी हूं। उन्हें मेरे अपहरण में एक मोटी रकम मिलने की आशा थी। अपहरण करने वालों का पूरा गैंग एक टूटी इमारत में रहता था। वहां कुछ लड़कियां और भी कैद हैं, कुछ को वे बेचने की योजना बना रहे थे, कुछ की फिरौती वसूल करेंगे। मैं बड़ी होशियारी से वहां से भाग निकली। जिस कमरे में उन्होंने मुझे कैद कर रखा था वहां दो चादरें भी थीं। मैंने दोनों चादरों को बांधा, फिर खिड़की के रास्ते से मैंने छलांग लगा दी। चादर काफ़ी छोटी पड़ रही थी, फिर भी मैंने ऊंचे से छलांग लगा ही ली। जूडो कराते और ऊंची छलांग लगाने में मेरी बराबरी कमी लोग कर सकते हैं। वहां जीप खड़ी देख मैं चटपट गाड़ी स्टार्ट करके भागी, पर गाड़ी का ब्रेक खराब होने के कारण गाड़ी रुक नहीं पाई और आपको मैंने परेशानी में डाल दी। आप ही के कारण आज मेरी जान बची। इतना बड़ा एहसान तो मैं उतार नहीं पाऊंगी, पर आपकी तरक्की में मैं थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। मैं आपको उस स्थान तक ले जा सकती हूँ जहाँ उस गैंग का अड्डा है। आप पूरी फोर्स लेकर चलिए, अभी रात है, वो सब नशे में धुत पड़े होंगे। इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, ये चंडू खाने की गप और कहीं सुनाना। अब तो मैं एक दूसरे जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तुम सेठ लक्ष्मीदास की बेटी नहीं हो, उनकी बेटी से तो मैं कई बार मिल चुका हूँ। लड़की बोली, अरे बाबा, इसी झूठ की बदौलत तो मैं उस गैंग के अड्डे तक पहुँच पाई थी। मैं आपसे कब कह रही हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। नौकरी न मिलने के कारण मैंने सोचा ऐसा कोई साहसिक काम करना चाहिए कि मुझे पुलिस में नौकरी मिल जाए। रोज शाम में गुंडे जैसे लोगों की टोह में घूमने लगी। एक दिन शाम को दो तीन बदमाशों को देखकर मुझे संदेह हुआ। मुझे लगा अपहरण की घटनाओं में इनका ज़रूर कोई हाथ है। मैं उन्हें जानबूझकर धक्का देती हुई निकली। फिर मैंने उन्हें डांट कर का देखकर नहीं चलते, अंधे हो क्या? मैं अपने पिता सेठ लक्ष्मीदास से कहकर तुम्हें इतना पिटवाऊंगी कि तुम लोग भी याद रखोगे। ये कहकर मैंने चिल्लाने के लिए मुँह खोला। उन्होंने आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारा किया, फिर ज़बरदस्ती मेरा मुँह बंद करके पास खड़ी गाड़ी में मुझे धकेल दिया। गाड़ी तेज़ रफ्तार से चल पड़ी। पूरे रास्ते वे खुश होते रहे कि सेठ लक्ष्मीदास से मेरे एवज में एक लंबी रकम फिरौती के रूप में मांगेंगे। उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, फिर वो पीने के लिए चले गए। इस बीच में मैं कैसे भागी ये सब आपको पता ही है। यकायक इंस्पेक्टर में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसने फौरन पुलिस फोर्स बुलाकर लड़की से कहा, अब हमारे संग जीप में बैठकर रास्ता दिखाओ। लड़की बोली, पहले एक प्लास्टिक के नकली सांप का जल्दी से बंदोबस्त कीजिए। एक सिपाही जल्दी से अपने बच्चे के खेलने का सांप उठा लाया। पुलिस फोर्स को लिए इंस्पेक्टर चल पड़ा। काफी दूर जाने पर एक निर्जन स्थान पर लड़की ने गाड़ी रुकवा कर कहा, अब हम पैदल ही चुपचाप चलेंगे। आगे जाने पर उसने एक टूटी इमारत की तरफ इशारा करके कहा, यही वो स्थान है। एक खिड़की की तरफ उसने इशारा करके कहा, देखिए वो चादर अभी भी लटक रही है। इंस्पेक्टर बोला, चादर तो बहुत छोटी है, आपने इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा ली? लड़की हंसकर बोली, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ऊंची छलांग लगाने में मैं माहिर हूं। अब इसी चादर के द्वारा हम कुछ लोग कमरे में पहुंच जाएंगे, बाकी फोर्स इमारत के चारों तरफ से घेर लेगी। जो नकली सांप आप लाए हैं उसे फेंक कर मैं चिल्लाऊंगी कि सांप मुझे काटने वाला है। वो सांप को मारने के लिए दरवाजा खोलेंगे, आप फौरन उन्हें दबोच लीजिएगा। इंस्पेक्टर ने प्रशंसा भरी दृष्टि से लड़की की तरफ देखा। लड़की के इशारा करते ही सब छिप गए। यकायक लड़की दर्दीली आवाज में चिल्लाई, सांप सांप। रात की निस्तब्धता में उसकी आवाज गूंज उठी। शराब के नशे में धुत गुंडे सक्रिय हो उठे। वे भागे भागे आए और चीखते हुए बोले, कहाँ है सांप? लड़की ने भयभीत निगाहों से एक तरफ इशारा किया। उन्होंने वहां सचमुच सांप देखकर दरवाजा खोला। बस सिपाही उन्होंने पकड़ लिया। धीरे धीरे करके वे लोगों से स्थान पर पहुंच गए जहां बाकी गुंडे सोए थे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर ली। एक के मुंह से चीख निकली, फिर तो 10-12 लोग पता नहीं कहां से निकल पड़े। इंस्पेक्टर ने गोली चलाई ताकि उसकी आवाज सुनकर बाहर खड़े कुछ सिपाही मदद के लिए पहुंच सके। वो लड़की बड़ी मुस्तैदी से गुंडों का मुकाबला कर रही थी। अपनी कला जूडो कराते व ऊंची छलांग लगा लगा कर वो कितनों को धराशायी कर चुकी थी। देखते देखते बाहर की फोर्स भी पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से गुंडों को वश में किया गया, फिर उन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ जेल में बंद कर दिया गया। एसपी ने इस सफलता के लिए इंस्पेक्टर राजेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। इंस्पेक्टर ने लड़की की तरफ कृतज्ञता से देखते हुए कहा, सर इस सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा इन्हें मिलना चाहिए। ये कहकर उसने लड़की की तरफ इशारा किया। एसपी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आपने इनका नाम नहीं बताया? इंस्पेक्टर सिट पिटाकर बोला, सर मुझे नाम नहीं मालूम। एसपी बोला, कमाल है, जिसने तुम्हारी इतनी मदद की उसका नाम तक तुमने नहीं पूछा। خیر آئندہ سے ایسی غلطی مت کرنا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ انسپیکٹر سر جھکا کر چلا گیا۔ ایس پی نے پرشنسا بھری درشٹی سے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اپنے وشے میں سب کچھ بتا دیجئے، پھر مجھ سے جو مدد ہو سکے گی میں آپ کی کروں گا۔ لڑکی نے کہا، سر میرا نام انوپما ہے، میرے پتا میرٹھ میں ایس پی تھے، میں ان کی اکلوتی سنتان تھی، وہ مجھے پولیس کی نوکری میں ہی بھیجنا چاہتے تھے، اس کارن بچپن سے مجھے جوڈو، کراتے، اونچی چھلانگے اور پستول چلانے کی شکشا دی تھی۔ پولیس کی نوکری میں جتنے بھی گن ہونے چاہیے تھے انہوں نے مجھے اس میں پارنگت کر دیا تھا۔ بی اے کرنے کے بعد میں پرتیوگتا میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ اسی بیچ میرے پتا ڈاکوؤں کی مٹھ بھیڑ میں مارے گئے۔ پرتیوگتا میں میں بیٹھ نہیں پائی، میں نے پولیس وبھاگ میں نوکری پانے کے لیے کافی دوڑ دھوپ کی پر سفل نہ ہو پائی۔ تب میں نے سوچا کوئی ایسا ساہسک کاریہ کرنا چاہیے جس کے بل بوتے پر میں اس وبھاگ میں گھس سکوں، اور جیسا آپ کو انسپکٹر راجیش سے گیات ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے کو خطرے میں ڈال کر اس گروہ کا پتہ چلانے کا پریتن کیا۔ اپہرن کی گھٹنائیں شہر میں بڑھتی جا رہی ہیں، پولیس اب تک سفل نہیں ہو پائی، اس کارن بھی میں نے اس کاریہ کو کرنے کی ٹھانی تھی۔ ایس پی نے پوچھا، اب آپ کا کیا وچار ہے؟ انوپما نے اتر دیا، سر ہمیں استری سمجھ کر ہماری یوگتا پر وشواس نہیں کیا جاتا، کس بات میں ہم پروشوں سے کم ہیں، ہم نے بھی ویسا دماغ پایا ہے جیسا پروشوں نے، ہاں ہمیں شاریرک بل ضرور پروشوں سے کم ہے، اس کی پورتی ہم جوڈو کراتے اتیادی سیکھ کر کر لیتے ہیں، اور وبھاگوں کی تو میں نہیں کہتی پر پولیس وبھاگ ضرور ہمیں نکما سمجھتا ہے۔ اگر بچپن سے ہی ہمیں پروشوں کے سمان ادھیکار تتھا شکشا دی جائے تو ہم ان سے پیچھے نہیں رہیں گے، ہمیں بھی اوسر ملنا چاہیے تبھی ہم اپنی پرتیبھا دکھا سکتے ہیں۔ ایس پی نے مسکرا کر کہا، اب آپ میری کیا سہایتا لینا چاہتی ہیں؟ انوپما نے اتر دیا، سر آپ نے دیکھ لیا اتنے گنڈوں کو پکڑنے کے بعد بھی ہم ان کے لیڈر کو نہیں پکڑ پائے اور نہ ہی ان کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل پایا ہے، ان گنڈوں کو آپ کتنی ہی یاتنا کیوں نہ دیں یہ اپنے سردار اور استھان کا پتہ نہیں بتائیں گے، میں اپنے بلبوتے پر اس گروہ کے سردار کو پکڑنے کا پریتن کروں، اس میں میں سمے سمے پر آپ کی سہایتا چاہوں گی، میرا نام لال گلاب، اسی نام سے میں آپ سے سمپرک کروں، مجھے ایک چھوٹا سا ایسا یتر چاہیے جس کے دوارا میں آپ سے بات کر سکوں، میں ایک سکھ لڑکے کا پارٹ کروں، پہلے میں کچھ ڈکیتیوں میں ان کی مدد کروں گی، بعد میں جب ان کا وشواس پراپت کر لوں گی تبھی ان کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ لگا پاؤں۔ ایس پی بولے، انوپما یہ کارے بہت خطرے کا ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ انوپما گمبھیر ہو کر بولی، آپ مجھے استری سمجھ کر ہی ڈر رہے ہیں، وشواس مانیے پروشوں سے کم مجھ میں ہمت نہیں ہے، آج اگر کوئی پروش یہ کاریہ کرنے جاتا تو آپ کے من میں سنشے نہ ہوتا، میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ خطروں سے کھیلنا ہی میرے جیون کا لکشیہ ہے، فالتو کی زندگی تو جانور جیتے ہیں، آپ مجھ پر وشواس کیجیے، آپ کے وشواس کو میں ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی کبھی۔ ایس پی کو سلامی دیتی وہ آفس سے نکلی، باہر نکلتے ہی اس نے انسپیکٹر راجیش کو دیکھا، راجیش مسکرا کر بولا، دیوی جی اب تو نام بتا دیجیے، کیا پھر سے مجھے ڈانٹ کھلانے کا ارادہ ہے؟ انوپما ہنس کر بولی، آپ نے پہلے میرا نام پوچھا ہی کب تھا، اب پوچھ رہے ہیں تو سنیے، میرا نام انوپما ہے، اگر اتنا بڑا نام بولنے میں آپ کو تکلیف ہو تو انو کہہ کر بھی بلا سکتے ہیں۔ یہ کہتی ایک رہسیمئی مسکراہٹ بکھیرتی وہ چلی گئی۔ انسپیکٹر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ راستے پر انوپما سوچتی رہی کہ جس وشواس سے پروشوں کو کاریہ سونپا جاتا ہے ویسا استریوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا، وہ بھی اس انسپیکٹر کو دکھا دے گی کہ اس میں بھی پرتیبھا تتھا ہمت کی کمی نہیں ہے۔ انوپما کو پنجابی بھاشا بہت اچھی طرح آتی تھی، اس سمے وہ اس کے کام آئی، اس نے ایک پنجابی لڑکے کا لباس پہنا، بالوں کو پنجابی لڑکوں کے سمان جوڑا بنا کر اس نے رنگین پگڑی باندھ لی، گلے میں ایک لال رومال ڈالا، اب وہ دبلا پتلا ایک پنجابی لوفر لڑکا لگ رہی تھی۔ اسی لباس میں وہ ایس پی کے آفس پہنچ گئی، اس نے انسپیکٹر کو دیکھ کر کہا، میں ایس پی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ انسپیکٹر نے اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، چل بھاگ یہاں سے، بڑا آیا ہے ایس پی صاحب سے بات کرنے والا، ان کے پاس فالتو سمے نہیں ہے جو تجھ جیسے لوفر سے بات کریں۔ لڑکا بولا، ان کے لیے ایک ضروری خبر لایا ہوں۔ انسپیکٹر نے سوچا، ہو سکتا ہے خبر ضروری ہو۔ اس نے ایس پی کا، سر ایک پنجابی چھوکرا آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ ایس پی بولے، अंदर भेज दो। लड़की ने अंदर जाकर बड़ी अदा से सलामी दी। एसपी ने विस्मय से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कौन सी जरूरी खबर देनी है? लड़का हंसकर बोला, आपने एक यंत्र देने का वादा किया था, उसी को लेने आया हूं। एसपी ने विस्फारित नेत्रों से उसे देखते हुए कहा, अरे अनुपमा, तुम हो? हे भगवान, तुम्हें तो कोई पहचान ही नहीं सकता। अगर तुम यंत्र का नाम न लेती तो मैं कदापि तुम्हें नहीं पहचान पाता। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे संग हैं, तुम जरूर सफलता प्राप्त करोगी, ये मेरा मन कहता है। उन्होंने उसे यंत्र देते हुए कहा, अनु बेटी, उन बदमाशों से होशियार रहना। बेटी शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने पिताजी याद आ गए। आंसुओं को पीते हुए उसने सैल्यूट मारा और ऑफिस से बाहर निकल आई। इंस्पेक्टर ने एक बार ध्यान से देखा पर कुछ समझ नहीं पाया। शाम होते ही अनुपमा पंजाबी लड़के के वेश में बदनाम होटलों और रेस्टोरेंट में पहुंचकर किसी लड़की को देख एक आंख दबाती, कभी सीटी बजाती। वहां बैठे गुंडे हंसते हुए एक दूसरे से कहते, अभी तो इसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली है तो ये हाल है, आगे जाकर तो ये खूब गुल खिलाएगा। रोज ही ऐसे होटलों में घूमने के कारण सभी उसे पहचान गए। वो बड़ी फुर्ती से हर एक का काम कर देती थी। इस तरह 10-12 दिन बीत गए। एक दिन उसने देखा, 2-3 खूंखार किस्म के आदमी होटल में आए और वहां बैठे 2-3 आदमियों को इशारे से बुलाकर धीरे धीरे बातें करने लगे। उसके वहां पहुंचते ही वे चुप हो गए। उसने उनसे सत श्री अकाल कहकर विनती की कि वो इन दिनों खाली है, कुछ काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तू क्या काम करेगा? अरे हम फूंक मारे तो ही तू उड़ जाएगा, जा पहले अपना शरीर बना तब काम मांगना। उसने बड़े विश्वास से कहा, गुरु, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। नमूना देखना है तो एक दो को भेज दो। सभी खिलखिला उठे और बोले, क्या हड्डी पसली तोड़वानी है? लड़के ने कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो आगे आए। उसकी ललकार पर एक गुंडे को बहुत गुस्सा आया, वो उसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ा। देखते देखते उस लड़के ने अपने जूडो कराते के नमूने दिखाने शुरू कर दिए। उस गुंडे की उसने अच्छी पिटाई कर दी। सभी एक स्वर में बोले, लड़का काम का है। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि कल इसी समय तुम हमें मिलना, तुम्हें काम मिल जाएगा। लड़का हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, चोरी डकैती के समय मैं अपने शरीर को घड़ों के बीच से आसानी से निकालकर घर का दरवाजा खोल सकता हूँ। बंदर के समान ऊंची छलांग भी मैं आसानी से लगा सकता हूँ। मुझे आशा है मेरा काम देखकर आप मायूस नहीं होंगे। खतरे वाला काम करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। उन गुंडों को सलाम करके वो लड़का चला गया। घर पहुंचकर उसने एसपी को फोन करके कहा, सर, अब चक्रव्यूह के अंदर मैं प्रवेश करने वाला हूं, अब आपको खबर देता रहूंगा। दूसरे दिन वो लड़का होटल में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ही वे गुंडे उसके पास आकर बोले, आज हम कहीं चोरी करने जा रहे हैं, तुम रात 12 बजे तैयार रहना। 12 बजे वो लड़का निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गया। बड़ी आसानी से पाइप पर चढ़कर उसने दरवाजा खोल दिया। उन गुंडों के चेहरे खिल उठे, उन्होंने वहां खूब लूटपाट की। लड़के से उन्होंने कहा, कल मिलना, तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। दूसरे दिन उसे 2000 रुपये मिल गए। इसी तरह कई डकैतियों में उसने डकैती की मदद की। एक दिन वो उन डकैतों से बोला, गुरु, एक बार सरदार का दर्शन करा दो, मैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर मुझे ले चलो, पर बस एक बार दर्शन करा दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। उन डकैतों ने सरदार से उसकी सिफारिश करते हुए कहा, सरदार, छोकरा बड़े काम का है, आप कहें तो एक बार आपके दर्शन करा दें, बेचारा बड़ा गिड़गिड़ा रहा है। सरदार हंसकर बोला, चलो ले आओ, मैं भी उसे इस बहाने देख लूंगा, पर बड़ी होशियारी से लाना। दूसरे दिन डकैत बोले, आज रात तुम तैयार रहना, हम तुम्हें ले चलेंगे। लड़के ने एसपी को फोन करके कहा, सर, आज आप मेरा बहुत दूर से पीछा कीजिएगा, काफी मात्रा में फोर्स होनी चाहिए, जब वो मुझे लेकर काफी दूर पहुंच जाए तभी आप लोग चलिएगा। वो लोग मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएंगे, मैं बहाना करूंगा कि मुझे उल्टी सी होने वाली है, मुझे दरवाजे के बाहर मुंह करके बिठा दीजिए। मेरी जेब में बच्चों के खेलने के लाल रंग के प्लास्टिक के टुकड़े होंगे, जैसे ही कहीं मोड़ आएगा मैं 2-3 टुकड़े फेंक दूंगा। हर मोड़ पर आपको टुकड़े मिलते जाएंगे, अगर किसी कारणवश उन्होंने वो टुकड़े देख भी लिए तो मैं यही कहूंगा कि खाली समय में मैं इनसे एक प्रकार का खेल खेलता हूं। लड़के ने प्लास्टिक के टुकड़े जेब में छिपा लिए और डकैतों के संग रवाना हो गया। कुछ दूर जाने के बाद वो बोला, मेरा जी मिचला रहा है, मुझे दरवाजे के पास बिठा दीजिए ताकि मुझे उल्टी आए तो मैं कर सकूं। जैसे ही मोड़ आया उसने थूकने के अंदाज में गर्दन बाहर निकाल कर टुकड़े फेंक दिए। जितने भी मोड़ पड़े उसने इसी प्रकार वे लाल टुकड़े फेंक दिए। सरदार के पास पहुंचते ही उसकी पट्टी खोल दी गई। उसने देखा कि एक कद्दावर आदमी कुर्सी पर बैठा है। लड़के की तरफ देख वो मुस्कुराया। लड़के ने उसके चरण छूकर कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं और लगन से काम करूंगा। गैंग के सभी लोग उपस्थित थे। सरदार ने एक लड़की के अपहरण की योजना बनाई। वो लड़की एक करोड़पति सेठ की बेटी थी। जब वे सब बातें करने में लगे थे पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। धीरे धीरे वो उस पुरानी इमारत में घुसने लगे। यकायक एक डकैत चिल्लाया, पुलिस पुलिस। उसकी चीख सुनते ही डाकुओं ने मोर्चा संभाल लिया। लड़का सरदार से बोला, सरदार मैं आपके संग रहकर आपकी रक्षा करूंगा, मुझे एक पिस्तौल देने की कृपा कीजिए। पिस्तौल पाते ही वो परछाई के समान सरदार के साथ लगा रहा। उसने एक पुलिस वाले पर गोली चलाई ताकि सरदार को उस पर विश्वास हो जाए। वो लड़का जानता था कि एक बार सरदार पर काबू पा लिया तो बाकी लोगों को पकड़ने में उतनी कठिनाई नहीं पड़ेगी। यकायक एसपी को देख लड़के ने इशारा किया कि यही सरदार है। सरदार ने जब एसपी को देखा तो अपने आदमियों समेत उस पर टूट पड़ा। एसपी को अपनी गिरफ्त में लेकर वो चीखा, आप सब अपनी बंदूकें फेंक दो वरना हम एसपी को गोली मार डालेंगे। यकायक वो लड़का जो पास ही खड़ा था उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए सरदार पर छलांग लगा दी। सरदार के बंदूक से निकली गोली लड़के की बांह को छीलती हुई निकल गई। इस बीच एसपी सरदार की गिरफ्त से मुक्त हो चुके थे। लड़के ने पिस्तौल एसपी की तरफ फेंक दी। पिस्तौल पाते ही एसपी ने सरदार की पैर पर गोली मारी। सरदार वहीं गिर पड़ा। इस बीच वो लड़का बड़ी मुस्तैदी से अपने जूडो कराते का कमाल दिखा रहा था। यकायक एक गोली उसके सिर की तरफ मारी गई। उसकी पगड़ी छटक कर दूर जा गिरी और कटे बाल उसके कंधों पर बिखर गए। थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्टर समेत सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर तो सिपाहियों में दूना जोश आ गया। एक लड़की की हिम्मत देखकर उनमें गजब की फुर्ती आ गई। सरदार को गिरता देख उसके साथियों के हौसले पस्त हो गए। सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। काफी लोग घायल हो गए थे, उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया। अनुपमा के शरीर से भी काफी खून निकल चुका था। एसपी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इनके शरीर से काफी खून निकल चुका है, फौरन खून देना होगा। सबसे पहले इंस्पेक्टर राजेश बोला, डॉक्टर मेरा खून लेकर इनकी जान बचाइए। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। एसपी ने मुस्कुराते हुए पैनी दृष्टि से इंस्पेक्टर को देखते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अगर इनका खून मैच ना खाए तो मेरा ले लीजिए, अनुपमा के कारण ही आज मेरी जान बची है, मेरे शरीर से जितना चाहे खून लेकर उसे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर का खून मैच नहीं खाता था इसलिए एसपी का खून उसे चढ़ाया गया। पूरी रात इंस्पेक्टर अनुपमा के सिराहने बैठा रहा। इस बीच एसपी ने अनुपमा की माँ को अपने घर बुला लिया था। हंसते हंसते ये भी कह दिया था, बहन जी आपको घर बैठे एक लायक सुंदर दामाद मिल गया है। अनुपमा की माँ के मुंह पर खुशियों के फूल खिल उठे। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी श्यामांगी बेटी का कभी विवाह भी हो सकता है। कश्मीरी ब्राह्मणों में उसकी बेटी के लिए वर मिलना कोई खिलवाड़ नहीं था। इसके अलावा उसकी बेटी पर बाप का साया भी नहीं था, पर घर बैठे इतना लायक दामाद पाकर उसकी खुशी का पैरावार नहीं था। दूसरे दिन एसपी अस्पताल पहुंचे तो बोले, अनु बेटी तुम्हारी बहादुरी पर मैं तुम्हें नायाब तोहफा देना चाहता हूँ, बोलो क्या लोगी। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मुझे इंस्पेक्टर साहब का सहायक बना दीजिए, बहुत मिन्नत करने पर भी स्त्री समझकर अपना सहायक बनाने में ये अपनी हेठी समझते हैं। एसपी ने इंस्पेक्टर की तरफ मुंह करके पूछा, इंस्पेक्टर तुम्हें क्या इनाम चाहिए, मेहनत तो तुमने भी की है। इंस्पेक्टर राजेश ने आंखें नीची करके कहा, सर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन्हें मेरी सहायिका ही नहीं जीवन संगिनी बनाने की कृपा कीजिए, आपकी बात ये कभी नहीं टालेंगी। लज्जा से लाल होते अनुपमा के श्याम वर्ण चेहरे पर ऐसी अरुणा छाई मानो अस्त होते सूर्य ने अपनी समस्त लालिमा उसके चेहरे पर बिखेर दी हो। इंस्पेक्टर मुग्ध भाव से उसे निहारता रहे।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी
arparadio.com की प्रस्तुति।